તારીખ 22/3/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 315, 316 અને 317 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 247
चौथे गुण स्थान में ध्यान में बैठे तभी निर्विकल दशा हो, ये ठीक है। वो भी एक जानकारी के लिए प्रश्न पूछा है, मुमुक्षु को उतना प्रयोजन उससे नहीं है। समाधान, ध्यान में बाहर से बैठे या न बैठे, कभी बाहर से बैठे और ध्यान होता है, कभी बाहर से न बैठे तब भी ध्यान होता है। क्या है, शारीरिक अवस्था पर ध्यान का आधार नहीं है। बाहर से कभी ध्यान में बैठे हो, कभी नहीं भी बैठे हो, कभी बाहर से बैठे और ध्यान होता है, कभी बाहर से न बैठे तब भी ध्यान होता है। ध्यान में बैठे तो ही ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। ध्यान तो एकाग्रता का पुरुषार्थ होने से ही लगता है और वो किसी भी हालत में हो सकता है। कोई तो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से बैठे तभी निर्विकलता हो या एकाग्रता हो, ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई सिद्धांत ऐसी बात नहीं है, क्योंकि त्रियंशों को तो सवाल ही नहीं। मछली होती है कैसे ध्यान में बैठेगी, वो तो पानी में तिरती रहेगी। नारकी के जीव कैसे ध्यान में बैठेंगे, वो तो परिणामों पर आधारित है ध्यान होना तो। और मनुष्य में भी ऐसा ही होता है। सौभाग्य भाई उनको तो लेटना ही रहता था, स्वास्थ्य बहुत कमजोर था, लेटे रहते थे। वो ध्यान में बैठे और सम्यक तो हुआ, ऐसा तो नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। ज्ञाता का अस्तित्व जो उसने ग्रहण किया है, नायक की धारा जो वर्तती है, उतनी एकाग्रता तो उसे चली रही है। चौथे गुण स्थान में स्वरूप ग्रहण तो है ही, और भीतर में ज्ञान धारा भी चालू ही है, तो उतना पुरुषार्थ और उतनी एकाग्रता तो वर्तती है, चली रही है। इसलिए उस प्रकार का ध्यान तो उसको है ही, यानी ज्ञानी को धर्म ध्यान कभी छूटता ही नहीं, और अज्ञानी को आर्त ध्यान कभी छूटता ही नहीं। ध्यान बिना का कोई जीव ही नहीं है, ध्यान बिना का कोई जीव है ही नहीं। वो ध्यान तो सबको परिणति में चालू ही है, तो उपयोग रूप ध्यान है तो अलग बात है। यहाँ प्रश्न उपयोग रूप ध्यान का है। प्रश्न उपयोग रूप ध्यान का होने पर भी परिणति में जो ध्यान है वो बात का ध्यान खींचा है, लक्ष्य कराया है कि देखो ये ध्यान तो है ही। तो उस प्रकार का ध्यान तो उसको है ही। ध्यान माने एकाग्रता, तो उस प्रकार की एकाग्रता तो उसे छुटी नहीं है, वो एकाग्रता तो चालू ही है। अमुक प्रकार की एकाग्रता तो उसे वर्तती ही है, परिणति वाली जो एकाग्रता है वो तो वर्तती ही है। जैसे अर्थ ध्यान की संसार के प्राणी की चलती है, वैसे धर्म ध्यान की ज्ञानी को चलती है। बाहर से शरीर ध्यान में बैठे तभी एकाग्रता में कोई विशेषता होती है, ऐसा नहीं है और ऐसा कोई बंधन नहीं है। क्या है कि ज्ञानी भी ध्यान में बैठे इसलिए उनको निर्विकल्प दशा आवे ही, विशेष एकाग्रता हो ही जावे उपयोग के, ऐसा कोई बंधन नहीं है। होता भी है, नहीं भी होता है। तो प्रश्न वो है कि चौथे गुण स्थान में ध्यान में बैठे तब तो निर्विकल्प दशा हो, कि ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं बैठे तो भी होता है, बैठे तो भी होता है और बैठे तो नहीं भी होता है, सब प्रकार बनता है। हाँ होता है। तो कहने का मतलब वो है कि शारीरिक अवस्था पर एकाग्रता का आधार नहीं है और उपयोग में एकाग्रता हुए तब तो ध्यान है ही, लेकिन उपयोग में एकाग्रता नहीं है इसलिए ध्यान नहीं है, वो बात भी नहीं है। परिणति रूप एकाग्रता तो होती ही है, तो होती ही है, वो ख्याल रखने का है। वरना क्या होगा कि ज्ञानी को भी एकांत अर्थ ध्यान है ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसको उपयोग में अर्थ ध्यान होते हुए भी परिणति में तो धर्म ध्यान छूटता ही नहीं है, परिणति में तो धर्म ध्यान चालू ही रहता है। और ऐसी परिस्थिति जो कुछ बदलती है वो मुमुक्षु की भूमिका से बदलती है। शुरू में भावना उग्र होने से आत्मकल्याण का लक्ष्य या ध्यान रहता है, तो सत्पुरुष का योग होता है तो उसका लक्ष्य वार उसका ध्यान हो जाता है, और भावभान भावभाषण होता है तो स्वरूप का लक्ष्य और स्वरूप का ध्यान हो जाता है परिणति में। ये तीनों बात परिणति में मुमुक्षु की भूमिका में पहले बदलती है, और ये मुमुक्षु की भूमिका का वर्णन हरिभद्राचार्य ने किया है योग दृष्टि समुच्चय में। यशो विजय जी ने भी इसके ऊपर से काव्य बनाया है, मन महिलानु वाला ऊपरे बीजा काम करंत रहे, तेम श्रुत धर्म में मन दृढ़ रहे नान क्षेपक वंतरे। तो जैसे स्त्री का चित्त अपने पति में है, वो उसका ध्यान है, उसकी परिणति हो गई तो उसका ध्यान वहीं रहता है, काम तो दूसरा करती है घर का सब, लेकिन ध्यान वहीं रहता है। उस तरह से मुमुक्षु का चित्त जो धर्म श्रुत किया, सुना, भाव से सुना और उसमें अपना परम आत्म कल्याण मालूम पड़ा उसको, तो उसका चित्त वहीं रहता है और वो ज्ञान क्षेपक मैंने चंचल नहीं होता, अक्षेपक हो जाता है, मैंने वो ध्यान है वो क्षेपक मैंने चंचलता से विरुद्ध है और क्षेपक होता है तो ज्ञान को ध्यान कहाना ज्ञान अक्षेपक अवंतर है ऐसा पद है। तो ऐसे मुमुक्षु का ज्ञान में विक्षेप नहीं है, ये क्षेपक ऊपर से विक्षेप शब्द आया, विशेष डिस्टर्बेंस होने से विक्षेप कहते हैं और ऐसा नहीं होने से अक्षेप कहते हैं, मूल शब्द क्षेप है, ऐसा विक्षेप और अक्षेप प्रतिपक्ष में है। तो जिसने अच्छी तरह धर्म को सुना समझा और उस धर्म प्राप्ति की भावना हुई तो कहते हैं कि उसका ज्ञान अक्षेपक हो गया, उसके ज्ञान में से विक्षेप चला गया, क्योंकि उसका लक्ष्य उसका ध्यान वहीं रहता है। ज्ञान के हिसाब से लक्ष्य कहते हैं, चारित्र के हिसाब से ध्यान कहते हैं, एक ही बात है। यहाँ तो उतनी सी बात है कि ध्यान में बैठने से निर्विकल दशा का कोई बंधन या नियम या सिद्धांत नहीं है ज्ञानी को भी। ये जानकारी का मात्र विषय है। प्रश्न है 316। एक बार निर्विकल दशा आने के पश्चात अमुक काल उसकी राह देखनी पड़े, ऐसा तो नहीं है? वो भी मुमुक्षु ने जानकारी के हिसाब से ही कुतूल से ही प्रश्न पूछा है, इसकी भूमिका का वो विषय नहीं है। समाधान, उसकी मैंने निर्विकल दशा के उस राह देखनी नहीं पड़ती, क्या कब आएगी कब आएगी, फिर से निर्विकल दशा कब आएगी कब आएगी, ऐसा विकल्प भी नहीं चलता और ऐसा परिणमन भी नहीं होता, राह देखने वाला परिणमन नहीं होता। जिसे अंतर्भेद ज्ञान की दशा चल रही है उसे अमुक समय पर वह दशा हुए बिना रहती ही नहीं, जिसका भेद ज्ञान चालू है उस वो निर्विकल दशा में सहज परिणमित हो जाता है, उसका कोई काल के साथ संबंध नहीं है, सहज हो जाता है। क्योंकि निर्विकल दशा यानी शुद्धोपयोग का कारण भेद ज्ञान ही है, प्रथम शुद्धोपयोग का कारण भी भेद ज्ञान है और पीछे भी बाद में भी बार बार शुद्धोपयोग होने का कारण भी भेद ज्ञान ही है। इसलिए वो भेद ज्ञान चलता है तो अमुक समय में अमुक, मैंने कोई काल का नियम नहीं है, यह दशा हुए बिना रहती नहीं, समय का बंधन नहीं है, अंतर की दशा है, उसके कोई समय का बंधन नहीं है। भेद ज्ञान की धारा वर्तती ही है, इसलिए उसे हुए बिना रहते ही नहीं। भेद ज्ञान की धारा वर्तती है तो निर्विकल दशा तो हुए बिना रहती ही नहीं, ये अंतर की दशा है। जो अंतर से न्यारा हुआ उसका उपयोग यदि बाहर गया हो तो वह पुनः अंतर में आए बिना रहता ही नहीं, क्योंकि उपयोग को बाहर में कहीं सर्वस्व नहीं है। पुरुषार्थ की कमी के कारण से उपयोग बाहर गया या पुरुषार्थ की मंदता के कारण से उपयोग बाहर गया, लेकिन बाहर में कोई सर्वस्व तो है ही नहीं कि जहां चौट जाए। मिथ्यात्व अवस्था में तो उदय को ही सर्वस्व रूप में ग्रहण किया जाता है। और ज्ञानी को कुछ नहीं है, सर्वदय है वो, कुछ नहीं है वो, एक पर चीज है यानी कर्म प्रसंग है। उदय है वो क्या है? कर्म का प्रसंग है। जैसे कोई बोले कि भी आपके मकान में के आसपास बहुत धमाल थी आजकल, तो कि हाँ पड़ोसी के वहाँ लग्न प्रसंग था या कुछ ऐसा था, वह कुछ ऐसा था, कुछ न कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कोई उस प्रसंग से लेना देना नहीं था, वो तो पड़ोसी के वहाँ था। वैसे उदय है वो कर्म प्रसंग है, आत्म प्रसंग नहीं है। तो उदय में उपयोग आता है जरूर ज्ञानी का भी, लेकिन वो जानते हैं कि कर्म प्रसंग है, ये मेरा प्रसंग नहीं है। उदय मेरा नहीं है, किसका उदय है? ये कर्म का उदय है, या उस उदय में कोई निमित्त होता है तो वो निमित्त का उदय है, मेरा तो उदय नहीं है। मेरे से कोई लाभ नुकसान, मेरे को कोई उससे लाभ नुकसान है ही नहीं। क्या है कि तीनों काल का संबंध कर्म से काट दिया, भूतकाल में किए उससे भी काटा, वर्तमान में उदय में आया उससे भी काटा, और भविष्य में आने वाले हैं उससे भी काट दिया। तीनों काल के कर्म जो है उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। सुगानी जी तो कहां तक लेते थे कि अवस्था में निगोदपना हो या अवस्था में सिद्धपना हो, मेरे को कोई हानि भी नहीं और मेरे को कोई लाभ भी नहीं, क्योंकि मैं तो उतना ही उतना रहा स्वरूप से, मेरे स्वरूप में कोई बदाघट तो हुई नहीं, अबटघट मेरा स्वरूप है, बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं है, ये मेरा अस्तित्व है हमेशा एक रूप रहने का, बस बात खत्म। क्या कहते हैं देखो, जो अंतर से न्यारा हुआ उसका उपयोग यदि बाहर गया, बिन तो पड़ गया, फिर भी पुरुषार्थ की मंदता के कारण से उपयोग बाहर गया तो वहाँ पुनः अंतर में आया बिना रहता ही नहीं। क्यों? कि सर्वस्व रूप में वहाँ स्थिर होने का कोई कारण उसको नहीं है, क्योंकि उपयोग को बाहि में कहीं सर्वस्व नहीं है। दृष्टांत आता है कि जैसे कोई पक्षी है, समुद्र में स्टीमर या वाहन पर बैठा है, कभी कभी उड़ करके जाता है बाहर, लेकिन बाहर में कोई बैठने का स्थान है ही नहीं उनको, न कोई पेड़ है, न कोई मकान है, न कोई बीजा दूसरा वाहन और स्टीमर है, तो थोड़ा एक दो चक्कर लगा के कहाँ आएगा, तो फिर वहाँ का वहाँ करके बैठेगा। एम नानी ने ठरी ने ठाम थवानु कोई स्थान नहीं, आप शू कह सकते इडियोमेटिक लैंग्वेज है गुजराती में, गुजराती में ठरी ने ठाम थवो એવું ક્યાં છે નહીં। સભી સંયોગ સભી પદાર્થ अपने से शून्य है। कैसे है? अपने से शून्य है, सर्वथा भिन्न है। तो बोलते कि देखो आपके यहाँ ऐसा प्रसंग हुआ, तो बोले कि मेरा आत्मा तो वहां नहीं था। क्या वो प्रसंग में मेरी आत्मा नहीं है? आत्मा वहां कहाँ है? प्रसंग में प्रसंग है, आत्मा कहाँ है वहां? इसलिए मेरे से शून्य है, बात खत्म। तो वहां कोई उपयोग स्थिर हो गए, ठहर जावे, अच्छा लग जावे, वो बात रहती नहीं है। जाता है उपयोग, निरस रूप से जाता है और वापिस आ जाता है। उपयोग को बाह्य में कहीं सर्वस्व नहीं है। वेद ज्ञान की धारा वर्तती है और स्वयं प्रतिक्षण न्यारा वर्तता है। देखो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं। एक बार तो विकल्प आया कि छह खंड को साध लो, साध भी लेते हैं। फिर भी उनको रस नहीं है उसमें। छह खंड साधने के बाद भी उसमें उसको रस नहीं है बिल्कुल, कि क्या रखा है इसमें, मेरे आत्मा से तो ये शून्य है। तो ये चीज है, बाहर में है और बाहर में ही रह जाएगी और कुछ समय के बाद हम तो यहां से चल बसेंगे। हमारा कोई वास्ता रहने वाला है ही नहीं। जैसे धर्मशाला में जाते हैं, कुछ समय आराम किया, चलो आगे, बस कोई लगाव नहीं। छह खंड का अधिपति बोलने में आता है, बोलता कि मैं कोई अधिपति बधिपति हूँ नहीं। रस नहीं आता हूँ, रस नहीं है। क्योंकि अंदर में स्वरूप रस नहीं आया, आत्मरस उत्पन्न नहीं हुआ। तो शुभ भाव का रस है, हृदय का रस है। उदय है वो कर्म के परिणमन की पर्याय है, आत्मा के परिणमन की पर्याय है ही नहीं। और ये स्पष्ट अनुभव गोचर होता है, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होता है कि मेरी पर्याय नहीं है। तो फिर मेरा स्वरूप तो दूर रहा, मेरी पर्याय भी नहीं है तो मेरा स्वरूप तो काफी दूर है। प्रत्यक्ष ऐसा है, यहां तो छोटे मोटे उदय में परिणाम में ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखो सभी उदय को एक साथ किक लगा दी, लात मार दी, किक लगा दी मैंने, लात मार दी। मैं मेरा आत्मस्वरूप जिसमें कोई उदय का संबंध हो ही नहीं सकता है, फिर स्वरूप को भूले तो कुछ भी हो जाएगा। उदय के साथ स्वरूप को पकड़ के बैठा है, उनको तो उदय कुछ है ही नहीं। उदय है वो कुछ ही नहीं। ऐसे उदय और इससे हीनाधिक उदय अनंत बार आए और अनंत बार गए। क्या है अभी आत्मा को इस विषय का? अभी जो उदय चलता है उससे हीन और अधिक दोनों प्रकार के उदय अनंत बार आए और अनंत बार गए। क्या हुआ आत्मा का, अभी क्या रहा है आत्मा में, कोई अवशेष है इसका, ये कुछ नहीं, वो तो भिन्न ही रहता है। तो भिन्न ही रहता है तो भिन्न ही अनुभव करो, अभिन्न अनुभव क्यों करते हैं। उपयोग को बाहे में कहीं सर्वस्व नहीं है, इसका मतलब भी है कि अगर भिन्नता नहीं रहती तो उदय में सर्वस्वपना आए बिना नहीं रहता। और देख लो स्पष्ट अनुभव विचर होगा, तो जो भी उदय है पूरा 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 टिंग है जैसे उदय आवश्य तो पूरा टिंग है जवान नहीं सर्वस्व जीव कहीं छेद नहीं। संयोग ने संयोग जान लिया बात खत्म। ज्ञानी को संयोग वियोग समेत दिखता है, क्या संयोग मिथ्यात्व अवस्था में संयोग हरा भरा दिखता है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और उसमें नित्यता स्थापित कर देता है शरीर में भी, कि जैसे मैं मरने वाला हूं ही नहीं, तो सर्वस्व रूप में वो पकड़ता है संयोग को, शरीर को और सभी संयोग को। जबकि ज्ञानी वियोग के साथ देखता है कि संयोग है पराई चीज है, क्या पराई चीज है, संयोग है वो पराई चीज है, कुछ काल तक संयोग में रहेगी बाकी नहीं रहने वाले, उसमें एकत्व करके क्यों दुखी हो जाए, क्यों दुखी हो गए, क्यों हो गए, फालतू के दुखी होने की क्या बात है। ही नहीं, एक एक परमाणु अपने कारण से आया रहा परिणमन कर रहा और गया, कुछ भी हुआ आत्मा के कारण से है ही नहीं। हम प्रसंग पर पड़ोसी की चीज ले आते हैं, जैसे भी बहुत अच्छा अलंकार है गहना, जो जिसका शादी है उसको दो तीन दिन पहनाने पहनाने की बात है, और वो डैमेज नहीं हुए, कोई चोरी नहीं कर ले, पूरी सावधानी से जतन भी करते हैं, बहुत जतन करने पर भी उसमें अपनत्व होता है क्या है? ज्ञान भूल जाता है क्या? बहुत अच्छा है, सुंदर है, कीमती है, बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया दिखाव का है,
लेकिन मेरा नहीं हो भी
और जतन भी बहुत करते हैं, लेकिन जतन के पीछे अपनापन नहीं है, जतन के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है को वापिस करना है, क्या है जतन तो जतन है, लेकिन जतन के पीछे अभिप्राय क्या है कि उसको वापिस करना है। हाँ जतन इतना करे कि अपना हो गए इससे भी ज्यादा, क्या कोई अपनी चीज चली जाए तो अपने को किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो हमारी चीज है उसमें क्या है, किसको क्या ले, दूसरे को क्या लेना देना, दूसरे की होवे तो शंका हो जाए कि देखो भाई कुछ गड़बड़ होगी, चोरी हुआ या नहीं हुआ किसे मालूम, इज्जत का सवाल होता है। तो जतन तो ज्यादा करेगा अपने से भी, लेकिन अपनत्व होने का सवाल नहीं, ज्ञान में वो बात छूटती नहीं कि चीज मेरी नहीं है, बस उतनी सी बात ज्ञानी को है। जो चीज संयोग में आता है कभी जतन करता करता हुआ भी दिखता है, लेकिन भान पूरा पूरा है कि चीज मेरी नहीं। शाम को दुकान बंद करे तो ताला को देख लेता है कि कहीं खुला तो नहीं रह गया, तेजेरे को देख लेता है कि कहीं खुली तो नहीं रह गई। फिर भी अपनत्व उसमें नहीं है। आई भी इसके कारण से, चीज गई भी इसके कारण से, और कुछ काल तक संयोग में रही तो भी इसके कारण से। सर्वस्व तो नहीं है ज्ञानी को, लेकिन कुछ नहीं है। क्या अभिप्राय में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी के परिणाम चिकने नहीं होते, रूखे रहते हैं। कैसे रहते हैं? रूखे हो जाते हैं। नहीं, वो बात ऐसे नहीं थी। शुरू शुरू में कभी कोई घर में प्रसंग आया और कोई सोने का काम सोने के वहाँ कराने का अपने हाथ से तो नहीं हुआ था। पहले तो वो जो घर में बड़े हैं वही करते हैं, इधर आए तो फिर इसमें क्या होता है कि फिर जो कपड़े जो दिया उसमें से सैंपल निकाल देते हैं, चाशनी कैसे गुजरती में सैंपल निकाल देते हैं, फिर जो चीज़ बन जाती है तो उसके साथ उसका कष्ट मिला करके मिलान करते हैं कि कोई उसने मिलावट तो नहीं कर दिया। तो बहु भाग तो क्या होता है कि मिलावट करने वाले मामूली करते हैं, जिसको हमेशा काम करना है वो मामूली कर रहे हैं, और मामूली फर्क दिखता नहीं। और दिखता तो वो जो जिसके वहां जाता है वो कहता नहीं, क्योंकि उसको भी रोज का काम है, आपस में दुश्मनी हो जाए, एक धंधा में बैठे हैं सब। तो सोने एक गढ़ने वाला होता है, कष्ट लगाने वाला दूसरा चौकसी होता है, वो अपना रिश्तेदार होता है। फिर भी 15 आने की बात होगी तो बताएगा नहीं, वो सोने से झगड़ा मिलेगा नहीं अपने कारण से, वो दुश्मनी नहीं धंधा में करेगा, भले ही अपने को कुछ कसर पड़े। ये सब अनुभव में आई हुई बात है। तो क्या अरे रुपया का 15 आना हो या 14 आना हो गया, मिलावट हो गया तो क्या हुआ? एक बोलू बे बोलू फेर कर एटले 15 आना 14 आना थिया ना रुपया ने, वो विकल्प ऐसे आता था कि चलो उतना सोना गया तो किस में से गया, कि सोने में से सोना गया, मेरे में से तो कुछ गया नहीं, कुछ कम हुआ तो कम हुआ तो सोने में से कम हुआ, मेरे में से थोड़ी ना कम हुआ है। अपने को मतलब तो कुछ टाइम उसको पहनने का है, वो भी जिसको पहनना है उसको पहनने का है, पहनाने का है, अपने को क्या लेना देना, एक काम निपटाओ और क्या है, बात खत्म। तो कोई ले गया, वो कर गया, वो कर गया, उसका जो आकुलता होती है वो नहीं होती है। तो कोठली में से कोठली गई और पैसा दिया और नहीं आया तो था उसमें से गया, अपने में से क्या गया, कुछ कम हो गया क्या है? अपने में से तो कुछ जाता नहीं, आया था भी उसके कारण से, रहा था भी उसके कारण से, गया तो भी उसके कारण से। आया और हमने रस लिया तो जाते वक्त आकुलता हुए बिना रहेगी नहीं, वो रस तोड़ना है। सही ज्ञान से, सही समझ से वो रस को तोड़ना है, और नहीं तोड़ोगे और आकुलता करोगे तो भी कुछ चलने वाली तो है ही नहीं। ये तो फालतू का कर्म बंधन करने की बात है, नया नुकसान मोल लेने की बात है, और कुछ बात है ही नहीं। ज्ञानी को बाहर में कहीं सर्वस्व नहीं है। वेद ज्ञान की धारा वर्तती है, भिन्नपना चालू ही है और स्वयं प्रतिक्षण न्यारा वर्तता है। ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष परिणाम में न्यारापना, अन्यपना, भिन्नपना प्रत्यक्ष है। न्यारी परिणति तो थी ही, न्यारी परिणति तो थी ही, वो तो न्यारी चलती थी, वो तो जुड़ती नहीं थी परिणति को, वो तो आत्मा के साथ वर्तती थी। उपयोग पलट जाता है, तो जो उपयोग है वो बाहर गया, वो पलट करके अंदर में आता है, परिणति तो परिणति चालू ही रहती है। जैसी परिणति हो वैसा उपयोग होकर पुनः आए बिना नहीं रहता। क्यों? कि परिणति की प्रधानता है, परिणमन में उपयोग की प्रधानता नहीं है, परिणति की प्रधानता है। सामान्य तौर से कभी कोई विशेष परिस्थिति में उपयोग की प्रधानता है। ऐसी बात है, तीव्र रस से उपयोग होता है तब उपयोग की प्रधानता है, और जब तीव्र रस से उपयोग होता है उसकी परिणति बन जाती है तो वो परिणति की प्रधानता है। परिणमन में ये दो बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जैसे मुमुक्षु है, स्वाध्याय करता है, स्वरूप का विचार भी चलता है उपयोग में, अध्यात्म शास्त्र को पढ़ता है, सुनता है, फिर भी अनुभव उपयोगात्मक नहीं होता। क्यों क्यों ऐसा नहीं होता? परिणति उल्टी चालू है, उल्टी परिणति चालू है तो काम नहीं होता। उपयोग में तो लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, सिद्धपद स्वरूप हूँ, कि अनुभव नहीं होता। वो तो क्या है कि उसको तो कुछ चीज ही नहीं है कि सीता और राम क्या है, उनमें तो कुछ समझ में आता है, फिर भी परिणति का बल कितना है कि चाहते हुए और उपयोग में बार बार विचार करते हुए भी वो सफल नहीं होता। उपयोग बनता है कि नहीं? हाँ। और ज्ञानी को परिणति इतनी बलवान है, उपयोग में लड़ाई होती है, उपयोग में तो लड़ाई करने को भी जाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है क्या ज्ञानी को? क्या नहीं लड़ाई झगड़ा करे क्या? ये भी ऐसा भी उदय प्रश्न चलता है, लेकिन उसकी परिणति उतनी तगड़ी है कि ये बेकार, अकेली दृष्टि नहीं है, दृष्टि का तो वक्र है ही, क्योंकि तो पूरी परिणाम की है, अनंत गुण की परिणति है ये। ज्ञान, चारित्र, पुरुषार्थ, सुख, आनंद, शांति, प्रभुत्व, विभुत्व, अनंत गुण की परिणति है। ऐसी बात है तो वो बेकार जाता है। जैसे मुमुक्षु को ये विचार बेकार जाता है, उसको वो परिणाम बेकार जाता है। लेकिन परिणति भी बदलती है। जब स्वरूप लक्ष्य होकर के अत्यंत स्वरूप महिमा और स्वरूप की धुन चलती है और उपयोग हो जाता है एकाकार तीव्र रस के कारण से, तो संसार की परिणति बदल करके आत्म परिणति चालू हो जाती है। तो परिणति की का उत्पन्न होना भी उपयोग पूर्वक है, लेकिन वो तीव्र रस वाला उपयोग होता है, तो उपयोग की बात परिणति में आ जाती है, उसको लब्ध कहते हैं, लब्धि कहते हैं। और वो परिणति बलवान रहती है तो विरुद्ध उपयोग सफल नहीं होता, इस परिणति से विरुद्ध उपयोग है वो सफल नहीं होता, बेकार जाता है। इसलिए ज्ञानी को मंद रस रहता है और तीव्र रस से परिणति बनती है, इसलिए मुमुक्षु को भी वो आज्ञा है कि तीव्र रस से उदय में परिणमन मत करो, क्योंकि परिणति बनेगी, जितना उपयोग में तीव्र रस लोगे उतनी परिणति बन जाएगी, और तगड़ी बनेगी, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तोड़ने में बहुत पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, तभी तो फर्क पड़ेगा, ये बात है। तो कहते हैं परिणति न्यारी तो थी ही, उपयोग पलट जाता है, कैसे जिके जैसी परिणति हो वैसा उपयोग होकर पुनः आए बिना नहीं रहता, ये बलवान परिणति है, इसलिए ऐसा उपयोग हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि उपयोग बाहर जाता है लेकिन उसको वहां कोई रस आता नहीं, भिन्नत्व के कारण से रस नहीं आता, भिन्नत्व के कारण से रस नहीं आता। जैसे कोई पराई चीज लाए चार दिन के लिए तो उसमें रस आएगा नहीं, बाहर में देखो कैसे डबल परिणाम चलते हैं, सगे संबंधी सब इकट्ठे होंगे, लोग देखेंगे वाह क्या अलंकार है इसके पास, वो भी समझता है कि लोग देखेंगे तो हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, लेकिन अंदर में भाने के माल अपना नहीं है, ये माल अपना नहीं है, दूसरे के माल से इज्जत बढ़ा देता है तो भी वो भान नहीं छूटता, है क्या नहीं, डबल परिणाम चलता है कि नहीं चलता है, भान हो गया वो छूटे ही नहीं, भान हो गया वो छूटे ही नहीं। वो भी दृष्टांत देते हैं ना, कोई बचपन में किसी लड़का को गोद लिया, गोद लेने वाला ने बहुत अच्छी तरह पालन पोषण करके बड़ा किया, बहुत स्नेह करते हैं क्योंकि दूसरा कोई लड़का है ही नहीं, लड़का को भी यही कि यही मेरे पेरेंट्स हैं, फिर भी जब उसको मालूम कराया जाता है कि देखो बात तो दूसरी है, तुमको तो अनाथ आश्रम में से ले आए हैं, ये लोग सज्जन हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बात अलग है, लेकिन वास्तव में तेरे पेरेंट्स तो वे हुई नहीं, इसकी नज़र बदली कि नहीं बदली, वो भान उसको कब छूटेगा, ज्यादा प्यार करेगा तब छूट जाएगा क्या, ये सवाल ही नहीं होता, कितना भी कुछ भी करे उसको भान है कि मैं इसका लड़का नहीं हूँ, ये मेरे माँ बाप नहीं है, बस बात खत्म। तो ज्ञान दशा वो चीज है, उसमें भान रहता है कि कोई मेरी चीज नहीं है, आजकल तो संसार के लोग स्वार्थी ही होते हैं, लेकिन कुछ भी स्नेह करे, कुछ भी कितना भी लगाव हो, ज्ञान दशा में बांध रहता है। भिन्न है सो भिन्न ही है, और भिन्न होकर ही रहने वाले हैं। गुजराती में कहेवत है, आंगली थी नख वेगड़ा इतला वेगड़ा, वेगड़ा मैंने जुदा भिन्न है। आप नख को काट सकते हैं, नाखून को काट सकते हैं, उसमें उंगली को कुछ होने वाला नहीं है, भले ही उंगली में से निकला है, वो भी बाहर से तो नहीं लगाया, फिर भी वो भिन्न है, वो भिन्न है, तो और चीज तो भिन्न है ही। इसको काटने से कुछ नहीं होता, तो दूसरा जो भिन्न है उसको काटने से क्या होने वाला है? तो कुछ होने वाला है ही नहीं। वो तो इसलिए बोलते हैं कि किसी लड़के को गोद लिया, फिर उसको लड़का हुआ, अब वो माँ बाप है, दोनों लड़कों को प्यार करते हैं, दोनों को एक सरीखी चीज देते हैं, खाने में एक सरीखा, पहनने में एक सरीखा, खेलने में एक, सब बात डबल आती है इसके घर में, क्या बुद्धू डबल, फिर भी फीलिंग डबल नहीं होती, फीलिंग डबल, ये मेरा और ये पराया, विकल्प करना पड़ता है क्या कि नहीं करना पड़ता, होता है कि नहीं होता है? त्यारे हम कहूँ आंगली थी नख वेगड़ा इतला वेगड़ा, ऐसी बात है। तो भिन्न को भिन्न रूप में देखो, हमेशा भिन्न को भिन्न रूप में देखो, और अपना अपनत्व की भ्रांति को छोड़ो, ये अपनत्व वाली भ्रांति खतरनाक है। क्या है ये? खतरनाक है। वो अधोगति का कारण है, नरक निगोद का कारण तो वही है। 537 पत्र में वो बात लिया क्या नहीं लिया? उपयोग बाहर जाता है तो परिणति की डोर उसे अपनी ओर खींचे बिना नहीं रहती। उपयोग को ज्यादा बाहर परिणति जाने ही नहीं देती, खींचती है, वो अंदर में जाती है ना, तो उपयोग को भी वो खींचती है। यानी परिणति का प्रभाव उपयोग पर हमेशा हमेशा रहता ही है, उल्टी परिस्थिति में भी और सुलटी परिस्थिति में भी, दोनों में होता है। ज्ञायक रूप से वेद ज्ञान धारा की परिणति निरंतर प्रतिक्षण सहज रूप से ज्ञानी को चलती रहती है। क्या है कि ज्ञानी को मैं ज्ञायक हूँ इस रूप ज्ञायक धारा की परिणति निरंतर, विकल्प नहीं करना पड़ता, निरंतर वो भान में है कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, वो सहज रूप से चलती रहती है। उस परिणति की डोर न्यारी है, वो तो भिन्न ही रहती है, भिन्न करने नहीं पड़ती, भिन्न ही रहती ही है। वो उपयोग को वहां टिकने नहीं देती, उपयोग बाहर जाता है लेकिन टिकने नहीं देती, विरुद्ध है ना, और बल इसका है, उपयोग का बल नहीं है, परिणति का बल है। उपयोग बल बलवान हो जाएगा तो परिणति पलट जाएगी, लेकिन उपयोग का बल नहीं होता, प्राय तो नहीं होता। પરિણતિ જ આડી આવે છે, અને પરિણતિને જે સમજતા નથી એને સમાધાન થતું નથી. મેં તો કોઈ વિભાવના કરતા નહીં, મેને તો નિવૃત્તિ લે લીયા, મને તો વિષય કશાય કે ઉતને પરિણામ નહીં હૈ, મેં તો સ્વાધ્યાય બહુ કરતા હું, સત્સંગ બહુ કરતા હું, યહી વિચાર ફુરસદ મેં ભી યહી વિચાર કરતા હું, ફિર મેરે કો અનુભવ ક્યો નહીં હોતા હૈ, મેં આગે ક્યો નહીં બઢતા હું. યે અસમાધાન હોતા હૈ જો પરિણતિ કો પકડ નહીં સકતે હું. લેકિન પરિણતિ હો ચુકી હૈ, બહુત રસ લિયા હૈ સંસાર મેં, ઉસકી પરિણતિ પ્રગાઢ હો ગઈ હૈ, વો કહાં જાયેગી. ઓર પરિણતિ કા નિયમ એસા હૈ કે જીવ ને જિસ રસ સે પરિણતિ કો પેદા કી હૈ, ઉત્પન્ન કી હૈ, ઉસસે વિરુદ્ધ રસ, ઉસસે તીવ્ર નહીં આયેગા, વો પરિણતિ મિટને વાલી હૈ નહીં, વો ચાલુ હી રહેગી, ઓર ઉસકા નુકસાન ભી ચાલુ રહેગા. પરિણતિ તૂટે તો દશા બદલ જાય, જ્યાં તક પરિણતિ નહીં તૂટેગી પરિસ્થિતિ નહીં બદલેગી. ભીતર મેં બહાર મેં આપ કુછ ભી કરો ઉસકા કોઈ બદલ નહીં હૈ. ઇસલિયે સ્વાધ્યાય આદિ સત્સંગ આદિ આત્મભાવના વો તીવ્ર રસ સે કરને કી આજ્ઞા હૈ, ઓર ઉદય મેં મંદ રસ મેં જાને કી આજ્ઞા હૈ, ઓર અભિપ્રાય સે પરિણતિ કા સંબંધ હૈ, ઓર સારી જો મુમુક્ષુ કા આરોહણ ક્રમ હૈ વો અભિપ્રાય બદલને કા પ્રોસેસ હૈ, ઓર કુછ નહીં. તો હૈ તો યે જો યોજના હૈ યે બહોત સિસ્ટમેટિક સાયન્ટિફિક હૈ. મહેશ્વર તો પરિણતિ ચર્ચા બહુ કરતે થે, બહુ કરતે થે, બાત બાત મેં ભી હમ તો 10 સાલ સાથ મેં રહે તો એસે કહેતે થે કે આત્માર્થ કો વૈરાગ્ય ઓર ભક્તિ કી તો પરિણતિ હો જાની ચાહીએ. ક્યા દૂસરા કુછ નહીં હોય તો વૈરાગ્ય ઓર ભક્તિ કી તો પરિણતિ હો જાની ચાહીએ, કરના નહીં પડે, સહેજ હું કે પરિણતિ મેં ચલતા હી રહે. બહુ વાત કરતે થે પરિણતિ કે વિષય મેં, હા હા, વો બહુ ઉસમે સ્પષ્ટ થે, ઉસ વિષય મેં બહુ સ્પષ્ટ થે. હા પરિણતિ હોતા હૈ, વો ઉપયોગ કો વહાં બાઈ મેં ટિકને નહીં દેગી, અમુક સમય પર ઉસે વાપસ ખીચી લાતી હૈ, ઓર સ્વરૂપ મેં લીનતા નિર્વિકલ્પ દશા હુએ બિના રહેતી હી પરિણતિ ચલની ચાહીએ. ઉપયોગ હોઈ જાયેગા, ઉપયોગ કી ચિંતા કરને કી જરૂરત નહીં હોતી, સહેજ હોતા હૈ વો, એસી બાત હૈ. સત્સંગ ઓર પૂરા યે આરોહણ ક્રમ ની ઉસી પર તો લિયા હૈ, ક્યાંકે અનેક સ્તર પર અભિપ્રાય બદલ જાતા હૈ, અભિપ્રાય ફરતા બદલતા હૈ, યા મંદ હો જાતા હૈ, યા ટૂટતા હૈ. યહાં તક સત્તરમાં નિર્વિકલ્પ દશાનો જ્ઞાનીનો ચાલ્યો છે. સૌ જ્ઞાની કઈ પ્રશ્ન લીએ, 17, 18, 19 સૌ પ્રશ્ન જ્ઞાન દશા પર લીએ, વહાં તક હૈ. एक साथ ले लेंगे।